थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
दर बदर भटके रहे दीन दुखी लाचार, हर तरफ आतंक है जात धर्म की दीवार। दया करना सृष्टि के सृजनहार,
मेरे भारत पे दया करना सृष्टि के सृजनहार।
कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारनहार, सृष्टि के सृजनहार।
मेरे भारत पे दया करना सृष्टि के सृजनहार।
नफरत की दीवार को भर दे हर दिल की दरार को, घायल यहाँ हर आदमी विश्वा तू हर गुनहगार को।
प्रिय मित्र, आप सबों को मेरा मसीही नमस्कार मिले। मैं प्रभु की दया से कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी प्रभु के प्रेम में बने रहकर कुशल पूर्वक होंगे। आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम लोगों ने अखमीरी रोटी के विषय में देखा था कि परमेश्वर क्यों इसराइलियों को अखमीरी रोटी ही खाने के लिए कहते हैं और अन्य जातियों के लोगों का इसराइलियों के साथ मिस्र देश से जाना भी हमने देखा था। आज के इस अध्ययन में हम इसराइल के पहलौठों का परमेश्वर के लिए पवित्र करना, फसह के पर्व को यादगारी के रूप में मनाना, पशुओं के पहलौठों का अलग किया जाना, इसराइलियों का मिस्र को छोड़ना और एथाम में पहुंचना, और परमेश्वर इसराइलियों के संतानों की अगुवाई दिन में बादल के खंभे के द्वारा और रात में आग के खंभे के द्वारा करते हैं, तो इन विषयों पर आज हम विचार करेंगे। इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जब हम आपके वचन पर मनन चिंतन करते हैं, आपके वचन से सीखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, उनके हरेक के आत्मिक आंखों को, कानों को, हृदयों को, विचारों को और एकाग्रतापन को आप खोल दीजिए। हर एक प्रकार के डिस्टर्ब करने वाले हर एक विचार उनके जीवन से आप दूर कीजिए, ताकि जब वे आपके वचन को सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के हृदय से बातचीत करने पाए। आज की शाम आप प्रत्येक को आशीषित कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सबसे पहले इसराइल के पहलौठों का परमेश्वर के लिए पवित्र करना देखें। इसराइल की संतान मिस्र देश को छोड़ रहे हैं और लाल सागर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय उसके 1-3 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि क्या मनुष्य के, क्या पशु के, इसराइलियों में जितने अपनी माँ के जेठे हैं उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह तो मेरा ही है। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया, इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। मित्रों, हम देखते हैं मिस्रियों के पहलौठे मारे गए और मिस्र के देवताओं ने हमेशा से ही पहलौठों को अपना माना था और अब परमेश्वर इसराइल के पहलौठों को अपना मानते हैं। वह आज भी चाहते हैं कि विश्वासियों के पहलौठे उसके हों। बहुत से मसीही लोग उसे पहला स्थान नहीं देते हैं और परमेश्वर हमसे हमारे सबसे उत्तम को चाहते हैं। परमेश्वर सभी चीजों में पहलौठों की मांग करते हैं। यद्यपि वह हमारे जीवन में पहला स्थान चाहते हैं, परंतु कई विश्वासी उसे अंत में रखते हैं और वही एक समस्या खड़ी करती है। यदि हमारे पास समय है तो हम प्रभु के लिए कार्य करेंगे, परंतु हमारे अधिकांश समय हमारे खुद की रुचि और खुशियों में बीत जाते हैं। हम साधारणतः प्रभु को वह समय देते हैं जो बचा खुचा होता है। मुझे याद है कि बिली संडे ने बहुत साल पहले एक कहानी सुनाई थी कि वह विलियम रिगली के साथ दूसरे देशों में जा रहे थे। यह वही है जिसने च्युंगम बनाया था। श्रीमान रिगली वह एक मसीही व्यक्ति थे और जब वे ट्रेन से जा रहे थे तो उन्होंने बिली संडे से कहा कि उसने अपने जीवन में यह आदत डाली है कि अपनी प्रत्येक कमाई का दसवांश वह प्रभु के कार्यों में देगा, और उसने आगे बताया कि यह अंतिम दसवांश नहीं है जो वह प्रभु को देता है। विलियम रिगली ने पहली बार अपनी कमाई का दसवांश प्रभु को दिया। यह काफी रोचक है कि कैसे प्रभु ने उसे आशीषित किया और फलाफुला बनाया। अब परमेश्वर किसी को भी भौतिक समृद्धि देने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, परंतु यह रोचक बात है कि कैसे वह पुरुष और स्त्रियों को आशीषित करते हैं जो उसे पहला स्थान में रखते हैं। और उसे पहले स्थान में रखने का अर्थ सिर्फ कहना ही नहीं कि हम उसे पहले स्थान में रखते हैं, परंतु करना भी है। इसमें कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। मित्रों, इसराइल की संतान सिर्फ मिस्र बाहर निकली ही है जहां पर वे कई वर्षों से दासत्व का जीवन जी रहे थे, और तब परमेश्वर तुरंत ही उनके पहलौठों को मांगते हैं। संभवतः लोगों ने कहा होगा, देख प्रभु, आपने अभी अभी हमें दासत्व के चंगुल से निकाला है और अब आप हमारे पहलौठों के लिए मांग कर रहे हैं। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह भी आपके लिए और मेरे लिए यही काम करते हैं। वह हमें पाप की गुलामी से बचाते हैं और हमें छुड़ाते और आजाद करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 36 पद में प्रभु कहते हैं, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मित्रों, प्रभु हमसे कहते हैं कि वह हमसे चाहते हैं कि हम उसे अपने आप को समर्पित कर दें। आप कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, क्या आप सचमुच में स्वतंत्र हैं? आप मूल्य देकर खरीदे गए हैं प्रभु यीशु के कीमती लहू के द्वारा। मित्रों, आशीष तब मिलती है जब आप अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं और उसे पहले स्थान में रखते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 13 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व करना। दूसरे शब्दों में इसराइलियों को फसा का पर्व और अखमीरी रोटी के पर्व को मनाना था। हम आगे निर्गमन 13 उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में न खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। मित्रों, जब इसराइली मिस्र देश में जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में अपने साथ आटा सानने का पात्र और गूंधा हुआ आटा ले लिया जो उनके साथ में थी। यह खमीर किया हुआ आटा था और परमेश्वर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि इसे हटा दो, 7 दिनों तक अखमीरी रोटी खाई जाए और तुम्हारे साथ और घर में भी खमीरी रोटी दिखाई नहीं देनी चाहिए। हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन 13 के 8 पद में, और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कह के समझा देना कि यह तो हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। मित्रों, गधी के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि इस बड़े कानों वाले जानवर में से एक भी बलिदान चढ़ाए। यह बलि एक मेमने का ही होना चाहिए था। मनुष्य के पहलौठे उनके बच्चों में से छुड़ाए जाएंगे, जिसे हम बाद में देखेंगे, जो चांदी के द्वारा होगा। चांदी छुटकारे का धन था। हम निर्गमन 13 अध्याय उसके 14 और 15 पद में देखते हैं, जहां पर लिखा है, और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे कि यह क्या है, तो उनसे कहना कि यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना ना चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहलौठों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से तो जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे नर हैं, उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। मित्रों, यह प्रथा इसराइलियों को याद दिलाने के लिए था कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला है। उनके पहलौठे पुत्रों को चांदी के द्वारा छुड़ाया जाता था। हमें 1 पत्रस 1 अध्याय उसके 18 पद में बताया गया है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। आगे हम निर्गमन 13 उसके 17 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछता कर मिस्र को लौट आए। मित्रों, इसराइली लोग दासत्व से निकले ही थे और वे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। सबसे नजदीकी मार्ग जो परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए दिया वह लाल सागर के किनारे का मार्ग था। मित्रों, जब 1967 के दशक में पलिस्तियों के देश में 6 दिनों के युद्ध के समय इसराइली सागर के तट पर चले गए और मिस्रियों को वहां से हटा दिया। हाँ, यह सच है कि इसराइलियों के पास उस समय तोप और जहाजे थी, वे तैयार थे, परंतु जो इसराइली मिस्र से निकलकर आ रहे थे उनके पास लड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं था, क्योंकि वे मिस्रियों के दासत्व से बाहर निकलकर आ रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह पूर्वक मरुस्थल के मार्ग में से होकर ले गया। यह मार्ग काफी लंबी थी, परंतु यह उन्हें युद्ध करने से बचा रही थी। उन्हें नए राज्य में प्रवेश करने तक किसी भी शत्रु का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें इस जंगल के मार्ग से होकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचने के लिए 40 साल लग गए। उसके बाद उनके पास भी अपनी एक सेना हुई और वे लैस थे, जैसे कि हम आज उसे देखते हैं। मित्रों, आप में से कोई कह सकता है, परंतु परमेश्वर उन्हें कोई चमत्कार के द्वारा छुटकारा दे सकते थे? जी हाँ, यह सच है, परंतु इस प्रकार का स्वभाव मुझे पसंद नहीं है। कुछ मसीह सोचते हैं कि परमेश्वर उनके लिए हर समय कोई चमत्कार करता रहे। वे सोचते हैं कि उनके पास प्रभु से मांग करने का अधिकार है कि प्रभु उनके लिए हस्तक्षेप करे जब वे बीमार या समस्या में हैं तब। मित्रों, यह परमेश्वर की योग्यता का प्रश्न नहीं है, वह कर सकता है, बजाय इसके कि वह प्रश्न वैसा ही हो जैसा कि परमेश्वर करना चाहते हैं। वह एक योजना पर चल रहे हैं और जब यह जरूरी होता है तो परमेश्वर हमारे लिए एक चमत्कार को करेंगे, परंतु सिर्फ हमारे जीवन में अपनी इच्छा और मार्ग को पूरा करने के लिए करेंगे। परमेश्वर इसराइलियों को एक चमत्कार के द्वारा फिलिस्तीन देश से होकर ला सकते थे, क्या उन पर आक्रमण होता? नहीं, परमेश्वर उन्हें छुटकारा भी दे दिए होते जब ये आवश्यक होता तब। तो परमेश्वर चमत्कारों को करने के लिए तैयार हैं, परंतु सिर्फ अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही करेंगे। हम निर्गमन 13 उसके 18 में आगे पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुन्दर के जंगल के मार्ग से ले चला और इसराइली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। मित्रों, शब्द हार्नेस्ट एक मजेदार शब्द है। इसका अर्थ है कि इसराइल की संतान एक सुव्यवस्थित तरीके से मिस्र से निकल गए। वे एक भीड़ को छोड़ झुंड बनाकर नहीं निकले, परंतु एक संगठित तरीके से निकले। उनके पास सेना नहीं थी, परंतु वे पांच की पंक्तियों में खड़े हुए। यदि आप उन्हें निर्जन में जाते हुए देखते तो आप उनके एक सबसे सुव्यवस्थित समूह को देखते। मित्रों, हम निर्गमन 13 उसके 19 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इसराइलियों से यह कह के कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। जब इसराइली मिस्र देश को छोड़े तो मूसा ने यूसुफ की हड्डियों को ले लिया। उत्पत्ति 50 अध्याय उसके 24 पद में एक मजेदार भाग है जो कहता है, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचाएगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। और फिर उत्पत्ति 50 उसके 25 में आगे कहता है, फिर यूसुफ ने इसराइलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। मित्रों, यूसुफ को इन शब्दों को कहे 200 वर्ष बीत चुके थे, परंतु अब वह समय आ गया था। जब वह मरा तब वह उस देश का नायक था और उसे मिस्र में ही दफनाया जाना चाहिए था, परंतु उसी समय एक फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। अब वह देश का नायक नहीं था और उसकी हड्डियां बिना किसी विरोध के मिस्र से हटाई जा सकती थी। मित्रों, यूसुफ चाहता था कि उसे प्रतिज्ञा के देश में दफनाया जाए, परंतु प्रश्न है कि क्यों उसके शरीर को हटाया जाए और उसे उस देश में दफनाया जाए। यदि यूसुफ जानता होता कि वह एक दिन मृतकों में से जीवित हो उठेगा और स्वर्ग में उठाया जाएगा, तो इससे क्या फर्क पड़ता, चाहे उसका अवशेष मिस्र में होता या इसराइल की भूमि में होता। इस तथ्य का अर्थ यह है कि वह स्वर्ग जाने की अपेक्षा नहीं कर रहा था, वह उम्मीद करता था कि इसराइल की भूमि में उसके लोग 1000 साल के लिए जीवित किए जाएंगे और तब अनंत काल के लिए और यहीं उनके लिए स्वर्ग होगा। यही आशा यूसुफ और मूसा की भी थी। विश्वास के द्वारा मूसा यूसुफ की हड्डियों को प्रतिज्ञा के देश में ले गया। और आगे हम देखते हैं ईश्वरीय मार्गदर्शन द्वारा एताम की यात्रा। हम निर्गमन 13 अध्याय के 20 से 22 पद में पढ़ते हैं, फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के लिए आगे से हटाया। मित्रों, इसराइल की संतान गर्म और तपते निर्जन क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, यहां तक कि मूसा ने भी इसे बड़ा और भयानक बंजर भूमि कहा। वे इसमें से होकर गए और सूरज की तपती गर्मी उनको नहीं जला सकी, क्योंकि दिन में उनके ऊपर बादल का खंभा था। मित्रों, इस राष्ट्र के पास कुछ ऐसा था जो दूसरे किसी देश के पास कभी नहीं हुआ, वह है महिमा और परमेश्वर की स्पष्ट उपस्थिति। जब पौलुस अपने नातेदारों को परिभाषित कर रहे थे तो उसने कहा, रोमियो के पत्र 9 अध्याय उसके 4 पद में, वे इसराइली हैं और लेपालकपन का हक और महिमा और बचाए और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। मित्रों, इन लोगों के पास महिमा और परमेश्वर की स्पष्ट उपस्थिति थी। यहां तक कि कलीसिया के पास भी परमेश्वर की स्पष्ट उपस्थिति नहीं है। कोई भी दृश्य कलीसिया को नहीं दिलाया गया, अर्थात दिया गया। इफिसियों के पत्र 1 अध्याय उसके 3 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। वे प्रभु यीशु के आने का इंतजार कर रहे थे और हम पीछे मुड़कर उस ऐतिहासिक घटना को देखते हैं। हमें विश्वास के द्वारा चलने के लिए परमेश्वर की स्पष्ट उपस्थिति की जरूरत नहीं है। मित्रों, उन्हें महिमा की आवश्यकता थी, क्योंकि इतिहास में छुटकारे का काम उस समय अभी तक नहीं हुआ था जैसा कि अब है। परमेश्वर ने प्रत्येक संभावित घटना के लिए प्रत्येक को तैयार किया ताकि वह अपने लोगों को बंजर भूमि में से होकर सुरक्षित ले जाए। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त होता है, परंतु हम अपने अध्ययन को अध्याय 14 से जारी रखेंगे और इस अध्याय में हम कुछ खास विषयों को देखेंगे। परमेश्वर का इसराइल के संतानों को निर्देश देना, फिरौन का अपनी सेना के साथ उनका पीछा करने की शुरुआत करना, इसराइलियों का असंतुष्ट होना और कुड़कुड़ाना, मूसा का लोगों को शांति देना, परमेश्वर का मूसा को निर्देश देना, बादल का खंभा का हटाया जाना और इसराइलियों का लाल सागर में से होकर जाना, मिस्रियों का सागर के रास्ते इसराइलियों का पीछा करना और उनका डूबना आदि। आइए देखें कि फिरौन उसकी सेना इसराइलियों का पीछा करती है। हम निर्गमन 14 उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पीहा हिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। मित्रों, निश्चित रूप से उस स्थानों को ढूंढना असंभव है, परंतु वे शायद नील नदी और लाल सागर के आसपास थे। निर्गमन 14 उसके 3 में हम पढ़ते हैं, तब फिरौन इसराइलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उलझनों में बझे हैं और जंगल में घिर गए हैं। मित्रों, फिरौन के पास इसराइल के संतानों को देखने के लिए गुप्तचर थे। जो भी हो, 2.5 लाख चलते हुए लोगों को छिपाना कठिन ही होता। फिरौन को आशा थी कि इसराइली समुद्र तट पर और पलिस्तियों के देश से होकर जाएंगे। जब वे बंजर भूमि की तरफ बढ़ने लगे तो वह सोचता है कि वे लोग खो चुके हैं और उन्हें नहीं पता कि वे कहां जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि फिरौन सोचता है कि ये अब फंस गए हैं और तब वह उनका पीछा करेगा। यह स्पष्ट है कि फिरौन ने इसराइलियों को अनिच्छा से जाने दिया था। परमेश्वर अब तक इस आदमी से पार नहीं हुआ है। हम निर्गमन 14 उसके 4 में आगे पढ़ते हैं, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उन्होंने वैसा ही किया। मित्रों, आप सोचते होंगे कि मिस्री लोग अब तक बहुत सी विपत्तियों का अनुभव कर चुके हैं, परंतु उससे भी कुछ गंभीर घटना होने जा रही थी जो उन्हें कायल करेगी। हम निर्गमन 14 उसके 5 से 7 पद में पढ़ते हैं, जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इसराइलियों को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ, वरन मिस्र के सबसे अच्छे रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठा है। मित्रों, मिस्र की सेना 600 रथों को लेकर इसराइलियों का पीछा करती है। आप सोच सकते हैं कि इतने रथों की संख्या इन निर्बल, गरीब, कमजोर, बेसहारे, शस्त्रहीन लोगों को, विशेषकर स्त्रियां, बच्चों और जानवरों को क्या हाल कर सकते थे। वे उनकी बर्बादी और काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। हम निर्गमन 14 उसके 8 से 10 पद में आगे पढ़ते हैं, और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इसराइलियों का पीछा किया, परंतु इसराइली तो बेखटके निकल चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें, जो पीहा हिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे, जा लिया। जब फिरौन निकट आया तब इसराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इसराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। मित्र, इसराइलियों ने आगे लाल सागर और पीछे मिस्र की सेना को देखा और उनके सामने ये था, ये बेचारे असहाय लोग दुष्टों और गहरे नील सागर के बीच में फंस गए हैं। और स्वाभाविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसराइली एक खराब स्थान में है। मित्रों, अब यहां पर हमारे अध्ययन का समाप्त होता है, इसलिए आज हम यहीं पर रुक जाते हैं और अगले अध्ययन में हम फिर से एक नए विचारों के साथ आपसे मिलेंगे। इसलिए आप अगले कार्यक्रम को अवश्य सुने। मैं विश्वास करता हूं कि आपको अवश्य ही इस कार्यक्रम के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। आपने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों को छुड़ाते हैं। मित्रों, हो सकता है कि आप मिस्र की गुलामी में नहीं हैं, परंतु कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। तो आज आप भी उन बुरी आदतों के गुलाम हैं। जो पाप है, अर्थात जो पाप करता है, वह पाप का गुलाम है। यदि आप भी पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु के पास आइए और उसके पास अपने पापों को मान लीजिए। प्रभु यीशु आपके पापों को क्षमा करने के लिए सामर्थी और तत्पर हैं। जिस प्रकार उसने इसराइलियों को छुड़ाया, वह आपको भी छुड़ाएगा। प्रार्थना करें और अपने जीवन में उसको जगह दें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मेरे भारत की दुआ सुनना है ये हमारी पुकार।
मेरे भारत की दया करना, सृष्टि के सृजनहार।
नाश हो रहे हैं तेरे बिना हर कोई गैर, ना कोई अपना। आके तू ही बचा ले प्रभु, इन आँखों का है यही सपना।
नाश हो रहे
इन आँखों का यही सपना। मेरे भारत की रक्षा करना यीशु, तू ही है उद्धार।
मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार।
बचाने वाला तुम बिन तारनहार,
कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारनहार।
मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार।